इशिका जब राधिका से मिलने के लिए कमरे में गई तब अभिमन्यु भी उसके पीछे आया था। उन्होंने सुना कि राधिका को कमरा दिलवाने का सारा क्रेडिट नक्श को दिया जा रहा था, जबकि उसने इस मामले में कुछ नहीं किया था। ऊपर से वो सब इशिका की इंसल्ट भी कर रहे थे। इशिका की इंसल्ट के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं वसुधा को भी नीचा दिखाया था, जो अभिमन्यु को कभी गवारा नहीं था। उसने पृथ्वी को तुरंत उनके कमरे में भेजा और बातों ही बातों में उसे ये कहलवा दिया कि राधिका को वो कमरा अभिमन्यु ने दिलवाया है। जैसे ही पृथ्वी ने सबको ये बताया कि कमरा अभिमन्यु ने अरेंज किया था, तो सब कोई हैरानी से पहले पृथ्वी की तरफ देखने लगे तो बाद में नक्श की तरफ। नक्श की नज़रें नीची हो गई थीं। नक्श इस बारे में खुद नहीं जानता था कि ये कमरा अभिमन्यु ने अरेंज करवाया था। नक्श मालविका की खुद की बेटी का होने वाला पति था, इसीलिए वो इतनी आसानी से उसकी इंसल्ट कैसे होने दे सकती थी। मालविका ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आपने बताया नहीं नक्श, आपने इस मामले में अपने चाचा की हेल्प ली है। जो भी हो, बात तो आपने ही की होगी ना, तभी उन्होंने रूम अरेंज करवाया था। नक्श का चेहरा उतर गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। अगर वो सच बोलता तो उसकी और इंसल्ट होती, और झूठ बोलता तो पृथ्वी उसे तुरंत पकड़ लेता। नक्श कोई भी बहाना बनाता उससे पहले पृथ्वी तिरछा मुस्कुरा कर बोला, जहाँ तक मुझे याद है रूम अरेंज करने के लिए मिस सिंघानिया ने कहा था। बोलते हुए पृथ्वी ने जानबूझकर नक्श की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर नक्श, आपने बताया नहीं कि आपने भी मिस्टर राजवंश को रूम के लिए कॉल किया था? मैं उनके सारे कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे अच्छे से याद है आपका उनके पास कोई कॉल नहीं गया था। नक्श का मन कर रहा था कि इसी वक्त वो किसी तरह गायब होकर कहीं और चला जाए। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नक्श ने हड़बड़ाते हुए अपनी बातों को कवर करते हुए कहा, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैंने भी काफ़ी लोगों को हेल्प के लिए कॉल किया था, उन सब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो रूम अरेंज करवा देंगे, तो मुझे लगा कि रूम अरेंज उनमें से ही किसी ने करवाया है। हाँ, गलतफहमी ही होगी, चलो अच्छा है, दूर हो गई, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। इन सब में नक्श के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी तो वो आयशा की थी। उसने खुद के गुस्से को काबू करने के लिए अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बांध ली थी। उसे मन ही मन सबसे ज़्यादा गुस्सा नक्श पर आ रहा था। राधिका उस मामले को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने पृथ्वी से शांति में कहा, मिस्टर राजवंश को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उनकी दादी से मिलने ज़रूर जाऊंगी। उन्हें कहिएगा कि मैं यहाँ काफ़ी आरामदायक स्थिति में हूँ। पृथ्वी ने भौहें चढ़ाकर कहा, जी बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मिस सिंघानिया भी परेशान नहीं होगी। वो खुश रहेगी तो दादी भी खुश रहेगी। वो आजकल मिस सिंघानिया का दादी के लिए खास ख्याल रखना पड़ता है। इतना कहने के बाद पृथ्वी वहां से चला गया। उसकी बातों ने उन सबको हैरानी में डाल दिया था। क्या कुछ ही दिनों में इशिका मिसेज वसुधा राजवंश के लिए इतनी ज़्यादा खास हो गई थी कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी? वसुधा राजवंश ही नहीं, अभिमन्यु राजवंश तक इशिका की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पृथ्वी के जाने के बाद इशिका मन ही मन मुस्कुराकर बोली, ओ तो ये अभिमन्यु था जिसने हेल्प की थी, वैसे इतना भी रूड नहीं है। इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मालविका को गुस्सा आ रहा था। वो उस पर चिल्लाकर बोली, खुद को इतना भी खास मत समझो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी दादी को कुछ याद नहीं है। जिस दिन सब याद आया उस दिन वो तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकेंगे। तुम आयशा से बेटर कभी नहीं हो सकती हो, इस बात को भूलना मत। मालविका की बातें राधिका को परेशान कर रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर आदर्श गुस्से में चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ, ये क्या बकवास कर रही हो, तुम घर जाओ, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। अचानक मालविका के चेहरे के भाव बदल गए थे। अब आदर्श ने उससे बहुत बदतमीजी से बात की थी, जबकि वो तो आयशा का ही फेवर कर रही थी। मालविका अपनी सफाई देते हुए बोली, आदर्श वो मैं। मालविका की बात पूरी होने से पहले ही आदर्श फिर से जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने कहा बाहर जाओ। सबके सामने इस तरह इंसल्ट होने पर मालविका की नजरें नीची हो गई थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस जाने से पहले एक नज़र गुस्से से इशिका को घूरा और फिर बाहर चली गई। मालविका चली गई थी तो अब इशिका आराम से राधिका से बात कर सकती थी। वो उसके पास गई और धीरे से बोली, अब आप कैसी हैं, रात को आपको ठीक से नींद आई ना? इशिका के पूछने पर राधिका ने इशिका की दी हुई दवाई की शीशी को कसकर पकड़ लिया था, जो उसने ब्लैंकेट के अंदर छुपा रखी थी। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल रात को मुझे लंबे टाइम तक नींद आई थी और बहुत टाइम बाद मैं इस तरह सुकून की नींद सोई हूँ। इशिका उसके कहने का इशारा समझ रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। राधिका ने उसे देखकर पलकें झुका दी। इशिका ने फिर आगे बात नहीं की और कमरे से बाहर निकलने लगी। पृथ्वी भी वहीं पर उसी के आने का इंतजार कर रहा था। वो इशिका के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वो दोनों साथ में थोड़ा आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा अभिमन्यु वहां दीवार से लीन होकर खड़ा था और अपने मोबाइल में लगा था। उनके कदमों की आहट सुनकर अभिमन्यु ने अपना मोबाइल अंदर रखा और फिर उनकी तरफ देखा। इशिका उसके पास आई तो उसने न जाने क्यों सफाई देते हुए कहा, दादी ने मुझे भेजा था, तुम जानती हो वो जिद्दी है तो मुझे आना पड़ा। इशिका ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने बस मुस्कुराकर धीरे से थैंक यू कहा। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। अभिमन्यु ने उसे देखा तो उसकी स्माइल को कुछ पल गौर से देखता रहा। वहीं कमरे के अंदर अब नक्श और नहीं रुकना चाहता था। उसने राधिका से कहा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई वो गलती से हुई थी, आई होप आप समझेंगी। आप बस बिना टेंशन लिए आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। राधिका ने उसे जाने की हामी भर दी थी। आयशा नक्श को छोड़ने के लिए बाहर तक आई। बाहर आते ही नक्श और आयशा की नज़र इशिका और अभिमन्यु की तरफ गई। वो दोनों जलती हुई निगाहों से अभिमन्यु और इशिका को देख रहे थे। आयशा उन्हें देखते हुए उनके बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। नक्श ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत अभिमन्यु की तरफ बढ़ा और बोला, चाचू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु ने सर्द निगाहों से नक्श की तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं अपने हर एक मोमेंट की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देने वाला हूँ? अभिमन्यु की निगाहें और उसके शब्द ही काफी थे नक्श का मुंह बंद करवाने के लिए। वो तुरंत हड़बड़ाकर बोला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नक्श समझ गया था कि उसने गलत इंसान से गलत सवाल पूछा है। नक्श ने फिर ऋषिका की तरफ देखा। परेशानी में भी वो खूबसूरत लग रही थी। यही वजह थी कि आयशा के पास होने के बाद भी वो ऋषिका को कभी भूला ही नहीं पा रहा था। अचानक उसकी नजर ऋषिका पर होते हुए अभिमन्यु पर गई। दोनों बिल्कुल किसी परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे को कम्प्लीट कर रहे थे। नक्श को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ऋषिका से बोला, मिस सिंघानिया, आपने मेरी परदादी का इतना ख्याल रखा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पर आपको नहीं लगता कि इतनी देर रात को आपको इस तरह हॉस्पिटल में किसी गैर आदमी के साथ नहीं रुकना चाहिए? लगता है आपके पति को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशिका ने जवाब देने से पहले एक नज़र अपने पति यानी अभिमन्यु की तरफ देखा और फिर सख्त आवाज में बोली, नहीं, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। इशिका बातों बातों में अभिमन्यु को ताना मार रही थी, जिसे सुनकर वो मन ही मन मुस्कुरा दिया, हालांकि उसके चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे।
इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, अभिमन्यु ने इशिका से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें दादी के पास वापस जाना चाहिए? क्या तुम्हें बाहर कोई काम है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, चलिए हम चलते हैं, इशिका ने जवाब दिया। इशिका और अभिमन्यु फिर वहां से जाने लगे। नक्श उन्हें पीछे से देख रहा था। इशिका को अभिमन्यु के साथ देखकर उसे और जलन हुई और वो इशिका को अब जल्द से जल्द अपने पास लाना चाहता था। नक्श खोई हुई निगाहों से उन्हें देख रहा था। तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका ध्यान टूटा। आयशा ने नक्श का हाथ सहलाकर कहा, नक्श तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर मर्चेंट अवेलेबल करवा दूंगी, बस तुम मुझ पर यकीन रखो। हाँ ठीक है, नक्श ने बिना किसी भाव के कहा। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ, आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर नक्श ने हाँ में सिर हिला दिया। वो उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। नक्श को छोड़ने के बाद आयशा वापस ऊपर आई। उसे नक्श का बर्ताव अजीब लग रहा था और ये किसकी वजह से था वो अच्छे से समझ रही थी। कमरे में आते ही आयशा की नज़र राधिका पर गई, जो वहीं कमरे में वॉक कर रही थी। हमेशा की तरह राधिका का चेहरा पीला नहीं पड़ा हुआ था। कल रात ठीक से सोने की वजह से उसे काफी रिफ्रेश फील हो रहा था। आयशा ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर राधिका की बेड को ठीक करने का दिखावा करने लगी। तभी उसकी नज़र इशिका की दी हुई दवाई पर पड़ी। आयशा ने उसे उठाया और बोली, मॉम ये कैसी दवाई है और आपके पास क्या कर रही है? आयशा के कहते ही आदर्श का ध्यान भी उस दवाई की तरफ गया। उसने भौहें उठाकर राधिका से कहा, राधिका ये दवाई तुमने क्यों ली है? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी। राधिका ने जवाब में धीमी आवाज में कहा, मैंने कल रात को इसे लिया था और इसे लेने के बाद मुझे बेहतर महसूस हुआ था। आपने देखा ना, कल रात मैं आराम से सो रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम कल रात चैन से सो रही थी क्योंकि नक्श ने तुम्हें दवाई लाकर दी थी। फिर ये लोकल स्टोर से खरीदी हुई सस्ती दवाई से तुम्हें कैसे आराम मिल सकता है? आदर्श ने बेरुखी से कहा और फिर आयशा के पास से दवाई लेकर अपने पास रख ली। आदर्श गुस्से में बड़बड़ाकर बोला, पता नहीं कहाँ से ये दवाई लेकर आई है और तुमने इसे ले भी लिया। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? आदर्श उस दवाई को फेंकने ही जा रहा था, तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो ना में सिर हिलाकर बोली, प्लीज इसे फेंकना मत, मैं आज रात इसे ट्राई करना चाहती हूँ। मैं आज इस दवाई को नहीं लूंगी, पता चल जाएगा कि कौन सी दवाई ने असर दिखाया है। ठीक है, फिर भी ये मेरे पास रहेगी, आदर्श ने बेरुखी से कहा। वो राधिका की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था। रात तक सब कुछ नॉर्मल था। खाने के बाद श्रुति नक्श की लाई हुई दवाई इस तरह से राधिका के हाथ में रख रही थी जैसे वो कोई जादुई दवाई हो। राधिका ने भी बिना शिकायत के उसे खा लिया था। उसके बाद श्रुति ने लाइट बंद की और बाहर आ गई। श्रुति के बाहर आते ही आदर्श ने कैरिंग वे में पूछा, राधिका ठीक है ना? उसने दवाई ली है, उसे नींद आ गई क्या? रिजल्ट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर चिंता मत कीजिए, ये इस दवाई का कमाल है, श्रुति ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। वो लोग लगभग आधे घंटे तक उस कमरे के बाहर बैठकर बातें करते रहे। आधे घंटे तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना कि मिस्टर नक्श की लाई हुई दवाई का ही कमाल है। वो इशिका जानबूझकर सारा क्रेडिट अपने सिर लेना चाहती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझे भी यही लगता है, आदर्श बोला। राधिका को फिर से चैन की नींद सोया हुआ देखकर श्रुति को मन ही मन खुशी हो रही थी। राधिका को तकलीफ में देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। उसने आयशा से कहा, मिस्टर नक्श वाकई एक अच्छे इंसान है, उनकी दवाई एक सेवियर की तरह है जिसने राधिका को आराम पहुंचाया है। उसने सच में हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है।
अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए आंटी, याद है ना, नक्श मॉम के लिए रूम अरेंज नहीं कर पाया था और इस वजह से उसे सबके सामने कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, आयशा ने धीमी आवाज में कहा। आदर्श ने आयशा की तरफ देखकर प्यार से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूम से ज्यादा जरूरी ये दवाई है जो उसने अरेंज करवाई थी। राधिका का ट्रीटमेंट प्राइवेट रूम या जनरल वार्ड में भी हो सकता था, अगले दिन रूम खाली हो जाता तो हम बुक कर लेते। रही बात रूम मिलने की, तो ये सब उसे शिका ने राधिका की नजरों में गुड पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए किया है। उसने खुद को अच्छा दिखाने के लिए पृथ्वी चौहान से मदद मांगी और फिर सबके सामने उसे भेज दिया ताकि उसकी तारीफ हो सके। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड, वो ऐसी ही है, आयशा ने उसकी बात पर सहमति जताकर कहा। फिर उसने आदर्श के हाथ से इशिका की लाई हुई दवाई ली और उसे गुस्से से देख श्रुति को देते हुए बोली, आंटी प्लीज आप इस दवाई को फेंक दीजिए, ये घटिया दवाई किसी काम की नहीं है, इसे लेने से मेरी मॉम की तबीयत और खराब ना हो जाए। श्रुति ने उसकी बात पर हामी भरी और दवाई लेकर फेंकने चली गई। तो ये कन्फर्म हो गया था कि वो नक्श की लाई हुई दवाई ही थी जिससे राधिका को आराम मिला था। दो भाई इन्हें तो कन्फर्म हो गया, पर क्या सच में नक्श की दवाई से उन्हें आराम मिला है, ये तो अगला पाठ ही बताएगा। चलिए कल मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।